जानना है सच, हर घड़ी हर लम्हा बस जानना है सच, दिल की हर धड़कन कहे बस ढूंढना है सच, जिस तरह भी हो सके बस छूना है सच, दुनिया को न माना आरज़ू को पहचाना अब कहाँ है जाना, प्यास है जो बुझती नहीं, ख्वाहिशें हैं ख्वाब है चाहते अरमान है, जज्बातों में सोच है गुम हूँ कहीं, सारे सवालों की उलझन में मैं ढूंढूं सही राह, क्या किताबों में या गुफ्तगू में क्या खोजूं खुद ही नहीं,
त्याग कर देता है और सत्य को जानने के लिए कई सारे आश्रमों में घूमता है, संन्यास ले लेता है और ऐसे ही एक बार एक आश्रम में 15 दिन तक रुकता है। पंद्रह दिन तक रुकने के बाद उसे ये पता चलता है कि वहां का जो मुख्य गुरु है उसे बहुत कम ज्ञान है, एक ही बात को वो बोर बोर करता है, रिपीट करता है रोज, और उसको लगता है कि इस आश्रम में रहकर मेरी ज्यादा उन्नति होने वाली नहीं है, रोज एक ही एक बात सुनते रहता हूं और यहां पर एक ही टीचर है और वो ही गुरु, रोज प्रवचन वो ही करता है, यहां रहकर क्या होने वाला है। तो वो सोचता है एक दिन रात को कि कल सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा, क्योंकि यहां ज्ञान का सूर्य तो है ही नहीं। परंतु संयोगवश उसी रात उस आश्रम में एक युवा सन्यासी आता है और वो इतना तेजस्वी होता है और रात में उसका प्रवचन होता है। तो ये जो नवयुवक था वो जब उसको सुनता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है, ज्ञान की ऐसी ऐसी बातें, ऐसे गुह्य गुह्य राज, ऐसे वेद की बातें, ऐसी उपनिषदों की बातें, ऐसी बातों का सूक्ष्म विश्लेषण, अध्यात्म के सूक्ष्म से सूक्ष्म गहराई का चिंतन। तो ये युवक जब उस नव सन्यासी को सुनता है तो सोचता है कि बस अब इसी के साथ जाना है, और वो साथ में ये भी देखता है कि उसी आश्रम का जो सीनियर, जो बूढ़ा सन्यासी था, सबका शिक्षक, वो भी वहां बैठा है। और ये युवक सोचता है कि ये बूढ़ा सोच रहा होगा कि मेरा जीवन देखो कैसे व्यर्थ चला गया, ज्ञानी तो ये है जो सामने बैठा है। ये युवक सोचता है इस बूढ़े शिक्षक के बारे में, ये भी सोच रहा होगा अंदर से कितना पश्चाताप कर रहा होगा कि मैं तो रोज वही वही बातें सुनाता रहता हूं और ये नया आया है, देखो कैसी ज्ञान की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताता है। तो ये युवक उस गुरु के विषय में जब ऐसा सोच रहा होता है तब वो जो नव सन्यासी था जो रात को आया था वो 2 घंटा तक प्रवचन देते रहता है, और 2 घंटे के बाद उस गुरु से पूछता है फिर आपको मेरी बातें कैसी लगी। तो वो जो गुरु होते हैं वो हंसने लगते हैं, वो कहते हैं कौन सी बातें, तुमने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। वो कहते हैं क्या, मैंने कुछ बोला नहीं, 2 घंटे से मैं बोल रहा हूं और आप कहते हो मैंने कुछ बोला ही नहीं। वो और हंसता है, कहता है तुम कुछ बोलते ही नहीं हो, तुम बोलो तो मैं सुनूं। वो कहते हैं क्या बात कर रहे हो, सबसे पूछो, कितने प्रभावित हो गए सब। गुरु कहता है कि नहीं पर तुम कहां बोल रहे थे। तो होता है फिर कौन बोल रहा था। गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर से किताबें बोल रही थी, वेद बोल रहे थे, उपनिषद बोल रहे थे, उधार का ज्ञान बोल रहा था, किसने क्या कहा ये बोल रहा था, तुम तो बोल ही नहीं रहे थे। तुम्हारा अपना कहा था कुछ ना, तुम्हारा अपना कोई अनुभव था ना, तुम्हारी अपनी कोई बात थी, जो तुम कह रहे थे वो बोरोड फिलोसॉफी थी, उधार की ली हुई फिलोसॉफी, उधार के लिए हुए फलसफे चिंतन, तुम्हारा अपना तो कुछ था ही नहीं, इसलिए तुम जो कुछ बोल रहे थे वो तुम्हारा नहीं था, तुम तो चुप ही थे। और जब वो युवा सन्यासी नव युवक जो आया था वहां ये बातें सुनता है तब निर्णय कर लेता है अब मुझे किसी बूढ़े गुरु के पास ही रुकना है, क्योंकि वो बातें तो वही वही कहता है परंतु सत्य इसी के पास है, और सत्य बातें नहीं है, और सत्य कोई किताब नहीं है, और सत्य कोई उधार का चिंतन नहीं है, और सत्य हमने कहीं से पढ़ा था इसलिए हम ये कह रहे हैं, ये नहीं है। सत्य हर दिन का पाठ है, सत्य हर दिन का अनुभव है, सत्य किसी भी किताब में नहीं है संसार के, सत्य किसी की भी वाणी में नहीं है, सत्य स्वचिंतन है, सत्य जो महावाक्य है उनको अपने जीवन में उतारना है। यदि वो ना किया और सब कुछ किया तो वो सत्य नहीं है। तो हर मनुष्य को सत्य की तलाश है, सत्य को पाना चाहता है, सत्य की खींच है, सत्य का आकर्षण है, पर सत्य है क्या वो किसी को भी नहीं पता, किसी किताब में नहीं, किसी परंपरा में नहीं, किसी धर्म में नहीं, किसी शास्त्र में नहीं, किसी वेद में नहीं, किसी उपनिषद में नहीं, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। ट्रुथ इज एन एक्सपीरियंस, सत्य अनुभव है। छोटी चीज का अनुभव, और जब तक उस अनुभव को हम नहीं पाते जब तक उस परम अनुभव को उपलब्ध नहीं होते, सत्य से हम बहुत दूर हैं। तो आज की सारी मुरली किस पर है? सत्य। सत्य के विषय में बाबा ने बहुत सारी बातें कही है अनेकानेक मुरलियों में। और अगर देखा जाए तो संसार में सबसे बड़ी शक्ति सत्य है, क्योंकि सत्य जहां है वहां सुख है, जहां सत्य ही नहीं वहां सुख नहीं हो सकता। इसलिए हर मनुष्य सत्य को पाना चाहता है। तो आज की मुरली में बाबा ने सत्य के विषय में बहुत गहरी गहरी बातें बताई है। सबसे पहले तो सत्य क्या है और सत्य क्या है, इसका अंतर क्या है। एक है सत्य और एक है सत्य। सत्य अर्थात जो सदा सत्य है, जो तीनों कालों में सत्य है, जो सनातन सत्य है, उसे सत्य कहा जाता है। एक है ट्रुथ, एक है इटर्नल ट्रुथ, जो सदा सत्य है, जो कभी भी नहीं बदलता, किसी काल में, किसी देश में, किसी धर्म में, किसी संस्कृति में, किसी मनुष्य के संदर्भ में जो कभी नहीं बदलता, उसे सत्य कहा जाता है। और सत्य सत्य शायद वो देश काल परिस्थिति अनुसार बदल भी सकता है। जो कभी सत्य था आज वो सत्य नहीं है। जैसे दवाइयों के क्षेत्र में, एलोपैथी में जो दवाई 10 साल पहले जिसके लिए कहा जाता था ये बिल्कुल देनी नहीं चाहिए, आज कहा जाता है वो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस है, उसे ही देना चाहिए। बदल गया सिद्धांत, तो बदल गया, रिसर्च बदल गई, सारे कॉन्सेप्ट्स बदल गए। तब वो सत्य था, अब ये सत्य है। ट्रुथ इज रिलेटिव, पर सत्य जो है वो एक ही है। तो आज की मुरली में कौन किसको देख रहा है? सत बाप है, सत शिक्षक है, सत गुरु है। बाप टीचर और सतगुरु तीनों ही सत्य है। संसार में भी बाप है, संसार में भी शिक्षक है, और संसार में भी गुरु है। पर बाबा ने कहा कि सत्य शिक्षक, सत्य बाप और सत्य गुरु केवल एक ही है। ऐसे बाप टीचर सतगुरु किसको देख रहे हैं? हमको। हम कौन है? हम कौन है? सत्य स्वरूप, अर्थात अपने सत्य स्वरूप में जो स्थित है। और हमारा सत्य स्वरूप केवल एक ही है, मैं आत्मा हूं। यहां आते ही हम सबको 2 डिग्रियां मिल जाती है। जो एकदम भोली भोली अनपढ़ माता है उनको भी, सबसे पहले IAS, आई एम सोल, कितनी बड़ी डिग्री है, IAS, कमाल है। सीधा एक कार और एक ड्राइवर, IAS। दूसरी IPS, आई एम पीसफुल सोल। तो आते ही 2 बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाती है, बड़ा घर, एक गाड़ी, एक ड्राइवर, सब मिल जाता है। तो हम कौन है? सत्य स्वरूप। अपने आप को ही चेक करना है कि हम अपने सत्य स्वरूप में कब तक कितना समय स्थित रहते हैं। अगर मेरा सत्य स्वरूप आत्मा है तो जब जब मैं देहभान में हूं और जब जब मैं देह को देख रहा हूं तब झूठ देख रहा हूं, असत्य स्वरूप में स्थित हूं। और असत्य का परिणाम है दुख और सत्य का परिणाम है सुख। तो जब जब देहभान में है और देह को देख रहा हूं और देह की दुनिया में रमन कर रहा हूं और देह के रिश्ते, संबंध, भाषा, स्थान, व्यक्ति, भोग, विलास, वासनाएं, देह से संबंधित जो जो बातें हैं उसमें डूबा रहता हूं, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सब देवभान की बात है। मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है क्या? मुझे बहुत प्यास लगी है, ये सारी वाणी देवभान की वाणी है। मैं बीमार हूं, देवभान की वाणी। तो सत्य स्वरूप में स्थित होना है। दिखाया है एक पंडित बहुत ज्ञानी रहता है, उसके पास सब लोग आते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और वो अपनी फटाफट किताब खोलता है और उनकी समस्याओं का हल बताता है। जब भी कोई समस्या लेके आता है, ढेर सारी किताबें है उसके पास, एक एक किताब को खोलता है, निकालता है, अच्छा क्या तकलीफ है, दुख, दुख का चैप्टर निकालता है, फिर पढ़ता है, फिर बताता है। कोई कहता है क्या हुआ, उदासी, वेट, उदासी के चैप्टर का चैप्टर निकालता है, फिर ट्रीटमेंट पढ़ता है, फिर फटाफट याद करता है और फिर बताता है। ऐसा करते करते बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। एक बार एक जंगल से गुजर रहा था, अपनी किताबों की पोटलियों के साथ, डाकू आ जाते हैं, कहते निकालो सारा माल। वो कहता है मेरे पास माल कुछ नहीं है, किताबें है। वो कहते किताबें दो, हम किताबें बेचकर पैसे कमाएंगे। वो कहते किताबें मत लेना, इसके आधार से तो मेरा जीवन चलता है, लोग जो समस्या लेके आते हैं उनको मैं कैसे हल करूंगा अगर आप मेरी किताबें ले लोगे। वो डाकू का सरदार, डाकू होकर सरदार कहता है तुम कैसे ज्ञानी हो कि बिना किताबों के तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कैसा ज्ञान है तुम्हारा। जिस दिन किताबें नहीं उस दिन अज्ञानी, जिस दिन किताबें है उस दिन ज्ञानी, किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी, ये किताबी ज्ञान है केवल। वो डाकू उसका टीचर बन जाता है, और जो किताबें पकड़ पकड़ के था वो छूट जाती है। तो सत्य स्वरूप अर्थात सत्य केवल लिखने की चीज नहीं है, पढ़ने की चीज नहीं है, किसकी चीज है, अनुभव करने की चीज है, धारण करने की, अनुभव करने की, आत्मसात करने की, अंगीकार करने की, चेतना में इंस्टॉल करना है ट्रुथ को। तो बाप, टीचर, सदगुरु किसको देख रहे हैं, सत्य स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। और क्या देखा, धर्म अलग अलग, मान्यताएं अलग अलग, रीति रस्म अलग अलग, फिर भी आकर्षित हुए, खिंचकर आ गए, कहां पर, इस राजयोग की तरफ, इस संस्था की तरफ। क्यों, क्या मिला यहां, सत्य ज्ञान मिला, सत्य प्रेम मिला, सत्य प्राप्ति हुई, और चौथा सत्य परिवार। ये सत्य परिवार है जो यहां मिला। अब तक जिस परिवार को सत्य समझते थे वो सत्य वास्तव में कभी था ही नहीं। सत्य परिवार तो ये है। इस परिवार के लिए बाबा ने कहा पूरा 21 जन्म इसी परिवार के साथ अलग अलग नाम रूप में चलेंगे। ये सुनकर दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहली रिएक्शन ओ माय गॉड, और दूसरी रिएक्शन ओ हो। कौन सी है हमारी, पहली या दूसरी? दूसरी की पहली, अभी मिले वापस मिलोगे क्या? तो बाबा ने कहा भिन्न भिन्न नाम रूप में, केवल 21 जन्म नहीं, आगे भी इसी परिवार के साथ हमारे हिसाब है ज्यादा, उन लौकिक वालों के साथ बहुत कम है, इधर ज्यादा है। तो ये सत्य परिवार है, इसी परिवार के जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। बाबा ने कहा है आसपास के पत्तों को जानना है, उनके स्वभाव को, उनके संस्कारों को, किन बातों से उनको दुख होता है, कौन सी बातें उनके लिए बहुत सेंसिटिव है, इस झाड़ के पत्तों को, सारे पत्तों को नहीं जाना जा सकता, थोड़े पत्तों को जो हमारे इर्द गिर्द है, जिनके संपर्क में हमको आना पड़ता है रोज, कम से कम उनके स्वभाव को, संवेदनशील स्वभाव को समझना। फिर है सत्य प्राप्तियां, यहां हुई है। अब तक जो प्राप्तियां संसार में थी वो प्राप्तियां थी ही नहीं, वो वास्तव में अप्राप्ति थी, जिससे अवनति हुई, उन्नति कभी नहीं हुई, गिरते ही गए, गिरते ही गए, गिरते ही गए। अगला सत्य ज्ञान, क्या है ये सत्य ज्ञान? ऐसा ज्ञान संसार में और कहीं पर भी नहीं। कहीं पर भी चले जाओ, कितनी बार मुरलियों में बाबा ने चैलेंज किया है, जाओ जाकर कोई होगा दुनिया में ऐसा बाप, ऐसा टीचर, ऐसा सदगुरु, तो ढूंढ के लाओ। ऐसा ज्ञान कहीं पर भी नहीं है संसार में। तो सत्य ज्ञान, सत्य परिवार, सत्य प्राप्ति, और चौथा सत्य स्नेह। संसार में भी स्नेह है पर मतलब ही है, कई बार धोखा मिला है फिर भी व्यक्ति छोड़ नहीं पाता, पकड़ के रखता है, अजीब सा एडिक्शन है। संबंधों में दुख है पर इच्छा ही दुखी होने की ज्यादा है। सबसे बड़ा एडिक्शन है दुख का, दुख ना मिले तो बेचैन होता है, उसे दुख चाहिए, विरोधाभासी बात है। तो शायद यही सत्य है। 10 लोग आके हमारी तारीफ करते हैं, 11वां आके निंदा करता है, बस जो निंदा उसने की उसको पकड़ लिया, जैसे उसी की तलाश थी, उसी के लिए बैठे हुए थे कि कब कोई निंदा करे और कब उसकी बातों को पकड़ू और कब रात भर सोचू और दुखी हो जाऊं। सौरव एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करता है सौरव। और जो लोगों ने स्तुति की, अच्छा कहा, टेकन फॉर ग्रांटेड, ठीक है हम तो है ही अच्छे, आकर्षण किसका है? दुख का। दुख को पकड़ता है, अच्छा लगता है उसको दुख, और ऊपर से कहता है मुझे सुखी होना है। अजीब है मनुष्य भी, उसकी सारी हरकतें। तो ऐसी 8 बातें हैं। पहला सत्य बाप, दूसरा सत्य शिक्षक, तीसरा सत्य गुरु, चौथा सत्य ज्ञान, पांचवा सत्य परिवार, आठवां छठवां सत्य प्राप्तियां, और सातवां सत्य स्नेह, और आठवां सत्य स्वरूप बच्चे, और आठवें हम देवकी नंदन। सत्य स्वरूप बच्चे इस मुरली में बाबा ने सेवाओं की बहुत चर्चा की है, और सेवाओं के उस दौर को भी याद किया है जो यज्ञ के शुरू में था। क्या कहा, कैसी सेवाएं थी उस समय? फॉर्म भराते थे, प्रश्न कैसे थे? डायरेक्ट, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, रामायण एक क्या है, नॉवेल, एज ए टॉपिक जिससे झगड़े हो जाए। पहले डायरेक्ट सुना देते, बाबा ने कहा फिर धीरे 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 इसको चेंज हुआ, फिर स्नेह सम्मान संबंध, संबंध संपर्क में आए, शांति की शक्ति का आकर्षण, राजयोग का आकर्षण, और ये सेवाओं की सफलता। 50 वर्ष की सेवाओं के बाद बाबा ये मुरली चला रहे हैं। 50 तो नहीं कहेंगे, 35 कहेंगे, यहां आने के बाद सेवाओं के 35। कराची में तो सेवा थी नहीं, तपस्या थी, तो जो कुछ भी सेवाएं हुई, जो कुछ भी उसका रिजल्ट है, बाबा ने कहा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। 1952 में एक वैज्ञानिक ने एक लेख लिखा था, उसमें लिखा था कि एक समय आएगा जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करेगा और सामने आमने सामने देखेगा। ये भविष्यवाणी की थी 1952 में, ये एक समय ऐसा आएगा कि जिस वेग से विज्ञान बढ़ रहा है, एक समय आएगा कि एक व्यक्ति पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने के व्यक्ति के साथ बात करेगा और एक दूसरे को वो देख सकेंगे। ये भविष्यवाणी थी, वीडियो कॉल। बाबा ने भी ऐसी बहुत सारी भविष्यवाणी कर रखी है। उस बाप को यह भी तो पता था कि ऐसा भी समय आएगा 50 साल 30 साल के बाद जब सेवाओं का ऐसा सफर होगा। उसे सब पता है, शुरुआत से पता है कैसी कैसी सेवाएं होने वाली है, फिर भी बहुत सारे राज को वो राज ही रखता है। तो 85 की मुरली है मार्च की, जिसमें बाबा ने कहा सेवाओं का वो दौर था, तुमने बहुत क्या सहन किया, बुलंद आवाज होगा, पहले क्या हुआ, बदनाम हुए। एक समय आएगा सभी कहेंगे एक ही बाप है, एक ही रास्ता है, सभी एक ही प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे आ जाएंगे। और अभी कहां है, किसका सहारा ले रहे हैं, तिनकों का सहारा ले रहे हैं, गुरुओं का सहारा ले रहे हैं। आज किसी गुरु के पीछे, बाद में पता चलता है वो गुरु अभी जेल में है, बेचारे भक्तों का क्या हो जाता होगा, कितने दुखी हो जाते होंगे भगत, चल रहा है अभी भी। तो बाबा ने कहा एक, ये सारे अखाड़े हिलेंगे एक दिन, तो जब तक प्रत्यक्षता का आवाज, एकता अनेकता की जो भ्रांतियां है ये दूर नहीं होगी, तब तक क्या नहीं होगा, विश्व शांति नहीं होगी। और हर व्यक्ति संसार में यही बताता है कि हमारा धर्म गुरु तुम्हारे धर्म गुरु से कैसे महान है, हमारा भगवान तुम्हारे भगवान से कैसे महान है, हमारी किताब तुम्हारी किताब से कैसी श्रेष्ठ है। जैसे दिखाया है एक गांव में, आदिवासियों का गांव है, बेचारे गरीब लोग है, अनपढ़ लोग है, एक ईसाई पादरी आ जाता है क्रिश्चियन, और वो देखता है इतने गांव में इतने सारे लोग हैं, अगर ये सारे क्रिश्चियन बन जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। वो सबको बुलाता है रात में और एक एक्सपेरिमेंट करके बताता है उनको, एक दो बकेट रखता है, एक जगह जीसस क्राइस्ट की मूर्ति और दूसरे हाथ में श्री राम जी की मूर्ति, और कहता है अब देखो आप ही दे, आप समझ लो कि कौन महान है, जीसस क्राइस्ट या श्री राम। जीसस क्राइस्ट को डुबोता है पानी में, जीसस क्राइस्ट तैरने लगते हैं क्योंकि वो लकड़ी की बनी हुई है ऊपर से कलर, राम जी को अंदर से थोड़ा लोहा डाल दिया है, उसको दूसरे बकेट में डुबोता है, राम जी तो गए नीचे, लोगों से कहते हैं आप ही देख लो ये है तुम्हारे राम, खुद को नहीं बचा पाए तो तुम लोग कैसे बचाएंगे। वो कहते हैं चलो आ जाओ मेरी शरण में, जीसस पुकार रहा है। वो कहता है बस बस कल सुबह ही बपतिस्मा, भगवान यही है। हम भी कैसे मूर्ख ठहरे, किसके पीछे पड़े थे, राम 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 राम, खुद ही बचा डूब गया, हमको क्या बचाएगा ये राम जी। तो बात फाइनल हो जाती है, दूसरे दिन कल सुबह सारे गांव वाले लोग ईसाई बनने वाले। उसी रात एक सन्यासी गांव में आ जाता है और जब वो ये बात सुनता है तो कहता है अच्छा ये बात है, ठीक है। फिर से गांव वालों को इकट्ठा करता है, आदिवासी गांव वाले, वो कहता है हमारे भारत में अग्नि परीक्षा प्रसिद्ध है, वो होनी चाहिए, उससे निर्णय होगा, ये पानी से नहीं होगा, अग्नि परीक्षा करेंगे हम श्री राम जी की और ईसा मसीह की। अब ईसा मसीह तो लकड़ी वाले थे और राम जी तो लोहे के थे, जब पादरी को पता चलता है तो रातों रात रफू चक्कर, क्योंकि ईसा मसीह तो जलने वाले थे सुबह। फिर इंग्लिश में कहावत है एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट, हर व्यक्ति बस अपनी महिमा करता है, मेरा ही धर्म महान है, तुम कहां फंसे हो, आ जाओ इधर। कृष्ण के भक्त कहते कृष्ण ही महान है, कृष्ण ही सर अखिल ब्रह्मांड नायक है, कृष्ण से बड़ा कोई भी नहीं है, 16 कला संपूर्ण है, राम तो 14 कला है, संपूर्ण अवतार कृष्ण है। उधर देवी के भक्त है, वो कहते हैं देवी, हाँ कृष्ण के भक्त कहते हैं कृष्ण ही इस संसार से पार लगाने वाला है भवसागर से, देवी के भक्त कहते हैं हाँ तो वही देवी ने उसी काम के लिए तो कृष्ण को रखा हुआ है, बाकी पावर तो सारा देवी के हाथ में है। अब वो क्या खुद लगाएगी? नहीं, अपार उसको ड्यूटी दी है कृष्ण को, बाकी तुमको आना इधर है, किधर? देवी के पास। तो संसार में जहां पर भी जाओ, जिस भी धर्म के व्यक्ति से मिलो, वो बस यही कहता है कि इधर ही आ जाओ, तुम बस हमारे पास आ जाओ, बस तुम्हारा उद्धार निश्चित है, कहां फंसे हो, आओ इधर, ये रियल है, सनातन सच्चा। तो बाबा ऐसे भूमि पर धरनी पर प्रवेश करते और सत्य ज्ञान सुनाते और यहां पर सेवाओं का आरंभ किया, और ज्ञान भी ऐसा जो वेदों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, जो भक्ति का नहीं, कुछ अजीब ही ज्ञान, ऐसा ज्ञान। तो और बाबा ने कहा अभी मधुबन में कुछ करो, आवाज बुलंद कहा होगा मधुबन में, और एक सेवा मधुबन की है और एक सेवा बाहर की है। मधुबन की 5 विशेषताएं बताइए, जब तुम यहां सेवा करते हो तो ये 5 विशेषताएं कौन कौन सी? बना बनाई स्टेज है यहां पर, वहां पर सेंटरों पर प्रोग्राम करो तो कहां करना पड़ता है? मंगल कार्यालय, जिसमें कल रात ही शादी हुई थी, दूसरे दिन वहां पर योग भट्टी, और योग भट्टी के तुरंत बाद दोबारा शादी है किसी की, हॉल लेने पड़ते हैं जहां पर अभी अभी ऑर्केस्ट्रा हुआ था, स्टेज बनानी पड़ती है वहां जाकर। जब ब्रह्मा कुमारी बहने स्टेज पर बैठती है तब अलौकिक वायुमंडल हो जाता है, वहां पर परिवर्तन हो जाता है सब कुछ। कहा ना मोहिनी दीदी से, टोटके, कौन से टोटके? उमंग उत्साह रहने के टोटके सुना के आओ, नया भाषण करके आओ, उमंग उत्साह में ला के ला उनको, ऐसा साधन बनो कि जो आत्माएं उन्नति हो जाए उनकी। तुम्हारा जाना जाना भी सेवा और रहना भी सेवा। तो पहली विशेषता मधुबन की, स्टेज बना बनाया। दूसरा वायुमंडल, पहले से ही शक्तिशाली वायुमंडल है, इसलिए जब भी मधुबन में आए फुल फायदा लेकर जाना है यहां से। विदेशी साल भर मेहनत करते हैं, साल भर पैसे कमाते हैं, टिकट को कितना पैसा लगता है आने को? 1-1 लाख रुपए लग जाता है आना जाना, साल भर मेहनत करते एक ही बार मधुबन आते, 10-12 दिन रहते हैं, परंतु हप कर ले जाते हैं सारा के सारा, 1 मिनट वेस्ट नहीं करते। मीटिंग्स करते रहते छोटी छोटी, योग के प्रोग्राम बनाते रहते, इससे मिलेंगे उससे मिलेंगे, कुछ ना कुछ करते रहते जिससे स्व उन्नति हो, क्योंकि उनको पता है वहां का वायुमंडल कैसा है, वेस्ट नहीं करते टाइम। तो यहां पर क्या है, बना बनाया वायुमंडल है, ये दूसरी विशेषता, इसलिए यहां से आवाज बुलंद हो सकती है। तीसरी विशेषता स्नेह की भूमि है, कौन सी भूमि है ये? स्नेह की, यहां आकर अपने आप प्रभु प्रेम के विचार आने लगते हैं, यहां आकर बाबा के प्यार में डूबने में मेहनत नहीं है, स्वतः ही आत्मा विलीन हो जाती है उसके प्रेम में। तो जितना हो सके अपने आप को क्या करना है, डूबोना, डूबने का डर तो नहीं है ना, हम डूब गए तो और भी अच्छा है। ये वैसा ही है जैसे नमक के पुतले ने प्रश्न पूछा, मैं इसमें कूदूं क्या समंदर में, मुझे देखना ये कितना गहरा है। उसके दोस्तों ने कहा ऐसी भूल मत करना, क्योंकि आज तक जो भी गए वापस नहीं आए। वो कहता है पर मुझे देखना है ये समुन्द्र कितना गहरा है, और नमक का वो पुतला कूदता है, पहले तो बहुत आनंद आता है, कितना अच्छा समुंदर है, पर धीरे 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 वो उसी में समा जाता है, मिट जाता है, पर अब वो सागर बन चुका है। वैसे प्रभु प्रेम का भी समंदर है, जिसमें आत्मा इतनी डूब जाती है कि वो बाप समान बन जाती है, सागर समान बन जाती है। सागर और वो अलग अलग नहीं रहे, फिर गोपिया और कृष्ण एक ही हो गए। वो गोपिया कहती है हम ही कृष्ण है, वो उद्धव बेचारा पूछता है तुम कृष्ण, वो कहती है हम ही कृष्ण है। वो कहता है कैसा पागल बने, ये 6 मास बिताता है उनको समझाने के लिए, आखिर में नतमस्तक करके आता है कि तुम ही राइट हो, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान की गर्मी थी और यहां तो प्रेम की आग लगी थी। डूब चुकी थी गोपिया कृष्ण में ऐसी कि उनको कुछ खबर ही नहीं, कृष्ण 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 में ही उदको गई थी। तो तीसरी बात क्या है मधुबन में, स्नेह की भूमि। चौथी, शुद्ध बुद्धि का प्रभाव। क्या है यहां पर शुद्ध बुद्धि का प्रभाव? संसार में बुद्धि मलिन है, मलेच्छ है, ओछी कमजर्फ बुद्धि है संसार की। यहां पर शुद्ध बुद्धि का प्रभाव है, यहां आते ही बुद्धि में नई नई टचिंग्स होती है। कोई एक समस्या किसी की है, मधुबन में आते ही एक रात बिताई बाबा की कुटिया में, बाबा के कमरे में बैठे, अचानक से फ्लैश होता है ये उत्तर है, ये करना चाहिए, ऐसा करो। अगला यहां पर क्या है, पांचवा, पवित्र पालना है। संसार में भी पालना है, पर पवित्र पालना नहीं है, वो स्वार्थी पालना है, विकारी पालना है, अपवित्र पालना है, शारीरिक पालना है, दैहिक पालना है, देह का टच है उस पालना में। इस पालना में नॉन फिजिकल पालना है, प्लेटोनिक जिसको कहते हैं फिलोसॉफी में, द प्लेटोनिक लव, नॉन फिजिकल लव, वह प्रेम जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। संसार में जो भी प्रेम है शरीर के इर्द गिर्द घूमता है, ये प्रेम का शरीर से कोई संबंध ही नहीं, और शरीर ही है प्रेम। तो मधुबन की 5 विशेषताएं कौन कौन सी, स्टेज रेडीमेड। अगर मधुबन में स्टेज रेडीमेड है, हमें अपनी भी स्टेज वैसी बना देनी है जैसी मधुबन की है। दूसरा, वायुमंडल बहुत शुद्ध है। तीसरा, स्नेह की भूमि। चौथा, शुद्ध बुद्धि का प्रभाव। और पांचवा, पवित्र पालना। ये मधुबन में 5 चीजें। फिर उसके बाद में इस मुरली में बाबा ने 8 युक्तियां बताई है नई सेवा की। बाबा ने कहा तुमने कॉन्फ्रेंस बहुत कर ली, चार्टर बहुत कर लिए, प्रदर्शनी बहुत कर ली, कोर्स बहुत करा लिए, फॉर्म्स बहुत भरा लिए, अब कुछ नया करो। तो 8 नई युक्तियां बताई है। सबसे पहले क्या करो, वर्कशॉप। पहले क्या करो, वर्कशॉप, कार्य शिविर जिसको कहेंगे, कार्यशाला जिसको कहते हैं, वर्कशॉप अर्थात कार्यशाला। किस पर करो, सत्य ज्ञान क्या है, परमात्मा ज्ञान का क्या है, वो कहां रहता है। बाबा ने कहा जो नामी ग्रामी है उनके साथ डिस्कस करो, वर्कशॉप करो, रूह रिहान करो, उनकी बुद्धि में ज्ञान जाएगा, वर्कशॉप करो। ये तो चलो बात सेवा की कही, अब पुरुषार्थ में क्या करना है। पुरुषार्थ में हमें अपना वर्कशॉप करना है, रोज रोज एक टॉपिक लेना है साकार मुरली से और उसके ऊपर वर्कशॉप करना है। जैसे कल की साकार मुरली में एक टॉपिक था पाई पैसे की समझ, दुनिया वालों के पास क्या है, पाई पैसे की समझ। अब इसको टॉपिक बना लो और इसके ऊपर वर्कशॉप करना, अपने मन को लेबोरेटरी बनानी है जिसमें बैठना है और वर्कशॉप करनी है। रोज एक वर्कशॉप होनी चाहिए हमारी, रोज एक वर्कशॉप, एक पुरुषार्थ की एक सेवा की। बाबा सेवा की कर रहे, हम पुरुषार्थ की बता रहे, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो आठ नई युक्तियां बताई है सेवाओं की। पहला वर्कशॉप, कार्यशाला, कार्य शिविर। दूसरा बताया पर्सनल शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, अपने अनुभव सुनाओ लोगों को तो प्रभाव पड़ेगा। भाषण जब करते हो केवल रटा रटाया भाषण ना हो, क्या हो, अनुभव वाली बातें हो। जिस भाषण में अनुभव आ जाता है वो एकदम टॉप स्पीच होता है, और जिस भाषण में अनुभव नहीं है केवल रटा रटाया है, लोग इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं और बीच में खाली तालियां बजाते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और गेट से बाहर और क्लासेस। तो बाबा ने कहा अपना अनुभव सुनाओ, भाषण में क्या करो अनुभव, और क्या प्राप्तियां क्या क्या हुई है ये भी सुनाओ, पर्सनल शेयरिंग आत्माओं के साथ करो तो प्रभाव पड़ेगा। तो ये दूसरा, बाबा ने कहा लोग कहें यही सत्य ज्ञान है, यही सत्य मार्ग है, यही सत्य ज्ञान सतयुग को लाने वाला है, ऐसा उनके अंदर ऐसा भाव प्रकट हो जाए। क्योंकि कभी भी हम किसी को भी शब्दों के द्वारा कभी भी नहीं सिखा सकते। यदि हमारे बारे में किसी को गलत फहमी हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग, और हम जाकर उसको क्लियर करें, मानता है क्या वो? कभी नहीं, और ही बातें बढ़ती है, फिर कैसे करना है? अपने मौन से और अपनी चलन से बस, और कोई मार्ग ही नहीं। किसी को कितना भी समझाओ कि तुम मुझे जो झूठा समझते हो मैं झूठा नहीं हूं, मानेगा? बिल्कुल नहीं। चुप, मौन से ही और अपने कर्मों से ही मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है रिलेशनशिप्स में, कोई भी रिलेशन हो, पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, माँ बाप, कोई भी। सत्य को जितना सिद्ध करने की कोशिश की जाती है उतनी बातें और बिगड़ती जाती है। सत्य स्वयं सिद्ध है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी युक्ति, जब भी किसी को ज्ञान सुनाओ क्या ऐड करना है उसमें, एक्सपीरियंस, अपना छोटा सा भी एक्सपीरियंस, छोटा सा एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया, पावर आ जाएगी उसमें। तो बाबा भाषण कैसे देना वो भी सिखा रहे हैं। देखो बाबा ने सब कुछ सिखाया, नहीं तो किसको आता था यहाँ भाषण देने की, किसी ने ट्रेनिंग ली है क्या? पर कैसी धाड़ लगाती है माताएं, नया ग्रुप आ गया तो ऐसा सुनाती है कि बस सामने वाला घायल। दूसरी युक्ति है एक्सपीरियंस शेयरिंग। तीसरी युक्ति में चार बातें हैं, सत्यता, अथॉरिटी हो, विनम्रता हो, नम्रता हो, और साथ साथ क्या हो, रहम दिल। सुनाते समय लगे कि बेचारे भगवान को नहीं जानते, आज आए हैं ओम शांति भवन में, हम उनको समझा रहे हैं, मधुबन की भूमि में फर्स्ट टाइम आए हैं, बेचारों को कुछ नहीं पता, कब जानेंगे भगवान कौन है, कब योग लगाएंगे, कब ज्ञान समझेंगे, कब मुरलियां सुनेंगे, कब प्रभु प्रेम में पागल होंगे हमारी तरह। हम भी बिगड़ गए, तुम भी बिगड़ जाओ, एक मराठी में अभंग है ऐसा, आम ही बिगड़ लो तुम ही बिगड़ाना, हम तो बिगड़ ही गए अब तुम भी बिगड़ो, हम तो कब से पागल हुए बैठे, तुम कहां थे, आ जाओ हमारी महफिल में, जश्न मनाएंगे रूहानी पियक्कड़। तो तीसरी बात, जब हम बोले उसमें अथॉरिटी हो, उसमें सत्य हो, परंतु साथ साथ नम्रता भी हो, और साथ साथ रहम भाव भी हो अंदर से, अंदर से लगे कि इनका कल्याण हो जाए, इनका कल्याण हो जाए, तो अहंकार नहीं दिखेगा। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे मुरली सुनाते हो तो सामने वाले को लगता है, नहीं लगता है ना, चाहे भगवान खुद सुनाता है या कोई बहन सुनाती है, लोगों को लगता है सेंटर के स्टूडेंट्स को ये बहन बहुत अहंकारी है, नहीं, क्योंकि उनको पता है भगवान की मुरली, और बाबा को हम खुद सुनते हैं तो लगता है कि बाबा कितना अहंकारी है, लगता है क्या, कैसी कैसी बातें करता है, मैं तुमको जला दूंगा, पति तो बंदरों की सेना हो तुम, बात बात में ऐसी ऐसी बातें बोल देता है कि हम सुनते सुनते खुश होते हैं, बजाय इसके कि दुखी हो। वैसे दुखी होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए हमको, ये क्या क्या कहता है। पर प्यार प्यार में पहले मीठे बच्चे से चालू करता है और धक्का लगा देता है बीच में से। महामूर्ख कहीं के शर्म नहीं आती, बाप को भूलते हो। वो जानवर देखो अपने बाप को भूलता है, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम अपने बाप को भूल। जानवरों जितनी भी बुद्धि नहीं है तुमने, ये सुनते समय गुस्सा किस किस को आता है? किसी को नहीं आता है। और ये कोई हमारा पति कह दे तो तुमको जानवरों इतनी भी बुद्धि नहीं है तो बाबा की टेक्निक ही अलग है। शुगर कोटेड है टैबलेट, अंदर से कड़वी है पर ऊपर से कोटिंग लगा के रखी है। सहज राजयोग, नीचे अग्निपथ, धधकती हुई अग्नि पर चलने का मार्ग। तो तीसरी बात है क्या करना है, नम्रता भी हो, प्रेम भी हो सुनाते समय। उसके बाद में चौथी बात, डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट स्पीकर्स, नए नए टॉपिक्स लेने हैं, नए नए स्पीकर्स। जैसे बाबा ने कहा, कोई एक जन बोले आत्मा के बारे में, दूसरा बोले ड्रामा के बारे में, तीसरा कहे आत्मा की विशेषता के बारे में, कोई दूसरा सुनाए गीता के बारे में, कोई तीसरा चौथा पांचवा सुनाए भगवान सर्वव्यापी नहीं है इसके बारे में, या वो एक बार आता है या अनेक बार आता है इसके बारे में, अलग अलग टॉपिक। ये तो 35 साल पहले की बात है, अब तो ये सब हो रहा है। जो भी हमारे शिविर होते हैं अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, सृष्टि चक्र, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या, सब कुछ साकार हो रहा है। ये तो बाबा जैसे पहली बार बता रहे हैं तब कि ऐसा करो, उसके बाद में विंग्स बनी और कितनी ढेर सेवा हो रही है, और उसका बीज है ये जो बाबा आज सुना रहे 35 साल पहले। तो अलग अलग टॉपिक्स पर बोलो, एक ही टॉपिक नहीं, अलग अलग टॉपिक्स पर, ताकि थोड़ी रमणीकता हो। तो पांचवा कौन सा है, चौथा, ये पांचवा स्लोगन। क्या करो, स्लोगन पर बोलो। जैसे कि एक स्लोगन, कोई भी मनुष्य सदगुरु नहीं हो सकता, दूसरा कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। कोई भी स्लोगन ले लो, संसार का कोई भी स्लोगन, चिंता चिता समान है, यदा यदा ही धर्मस्य वासुदैव कुटुंबकम्, कोई भी एक स्लोगन ले लो और उसके ऊपर बोलो, सबका मालिक एक स्लोगन उसके ऊपर बोलो, पांचवा। उसके बाद में छठवा, तीर भी लगे और दर्द भी ना हो। ये कैसे करेंगे, तीर लगा दो और दर्द ना हो। इंग्लिश में कहते हैं द काइंड क्रूएल नाइफ ऑफ सर्जन, सर्जन का जो चाकू होता है ना, ऑपरेशन जिससे करते हैं, वो बड़ा कठोर भी होता है बड़ा प्रेममय भी होता है। काट तो रहा है पर कल्याण के लिए, काइंड क्रूएल नाइफ ऑफ सर्जन, अलंकार है, एंटीथेसिस जिसको कहते हैं, दो अपोजिट शब्द है एक साथ। तो यहां पर भी प्यार से उनकी पालना करनी है, वेलकम करना है, इस्तकबाल करना है, सब कुछ करना है, उनको दिखाना ये मधुबन है, ये वो है, ये वो है, ये वो है, भोजन भीजन भी करा देना, अच्छा कमरा भी मिल गया, और फिर धक्का दे देना थोड़ा सा कि भगवान वो निराकार है, ये नहीं जिसको तुमने पकड़ के रखा है, जिसका गले में लॉकेट डाल के रखा है राम जी, जो भी जिनके भी गुरु है, धक्का थोड़ा सा बीच में से लगा देना बस। इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलर्स, फिलर्स, बीच बीच में धक्का दे देना। फिलर्स मतलब जैसे कोई युवा कुमार ज्ञान में आता है और माँ बाप तो बिल्कुल धार्मिक है ही नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसको बहुत दूर की बात, बीच बीच में फिलर्स देते रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वाक्य कि जो उससे वो तैयार हो जाए जुदाई के लिए, इसको कहते हैं फिलर्स। उसके बाद अगला सातवां भाषण, कौन से किस पर भाषण करो। बाबा ने कहा वो भाषण बहुत कर लिया, भाषण किस पे करो, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म का अर्थ क्या है, सोर्स क्या है, ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है ये कहां से निकली है, ये कैसे हो गया, इतने सारे लोग कहां से आ गए, इतनी माता है, इतने कुमार, इतने बहने, सोर्स क्या है, कौन है इसके पीछे, इस पर भाषण करो, भाषण। और उसके बाद में आठवीं पॉइंट, जो प्लान करते हो उसका क्या करना है, वो प्लान को समझो, ये बीज है, उस बीज को ही शक्तिशाली बना दो तो बहुत पावरफुल होगा, पावर आएगी, फल निकलेगा, उससे श्रेष्ठ फल निकलेगा। और इसी के साथ और एक बात यहां जोड़िए, बैलेंस वाली, जो भी सेवा करो उसके साथ क्या हो, स्वस्थिति का बैलेंस हो, दोनों चीजें साथ साथ हो, पहले स्वस्थिति श्रेष्ठ हो फिर सेवा में उतरना है, बिना स्वस्थिति की सेवा में उतरे कि डिस्टर्बेंस होगा। तो ये सारी मुरली में ऐसी आठ बातें हैं जो नवीन बाबा ने बताई है, जो युक्तियां करनी है। पहला बताया वर्कशॉप करो, दूसरा बताया अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो या लिखो, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। तीसरा नम्रता, अथॉरिटी, सत्यता और रहम। चौथी बात बताई अलग अलग टॉपिक्स, रोज की मुरली से टॉपिक्स निकालने हैं और लिखना है, यह हर एक को अभ्यास करना है। मुरली सुनते सुनते टॉपिक लिख के रख देना, जैसे पर कल की मुरली में था विहंग मार्ग की सेवा, बस उतना लिख दिया छोड़ दिया, अब सारे दिन भर रोटियां बेलते बेलते सोचना है विहंग मार्ग की सेवा, विहंग मार्ग की सेवा, थकावट नहीं, कैसे करूं विहंग मार्ग की सेवा, विहंग अर्थात पक्षी। उसके बाद में क्या बताए, पांचवा स्लोगन, छठवा तीर लगाना है, ऊपर से बहुत अच्छी पालना करना है और बीच में से एकदम तीर छोड़ देना, बस ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, उनको बोलना हाँ ठीक है राम जी की भक्ति करते हो करने दो, वो भी भक्ति, रामनवमी कब है, और फिर बीच में से बोल देना पर भगवान तो एक ही शिव बाबा है ना, खत्म। ऊपर ऊपर से बोलना और बीच में एकदम तीर छोड़ देना, फिलर, पर याद तो एक को ही करना है ना। बाबा ने इस मुरली में भी कहा उनको समझाओ कि एक को याद करने से कैसी एकाग्रता आती है, ये मत कहो भगवान सर्वव्यापी है, पर ये कहो नहीं है, ऐसा नहीं कहो, कहो कि एक को याद करने से क्या क्या प्राप्ति होती है और एक वहां है वो, ऐसे करना है, युक्ति। उसके बाद में अगला भाषण, भाषण में नवीनता, मोहिनी दीदी को कहा ना नया भाषण। उसके बाद में लास्ट प्लान, बीज है, फिर बाबा ने विदेशियों से बात की और बहुत अच्छी बात कही उनको कि उनके पास क्या है, सूक्ष्म कनेक्शन है, स्नेह का, सहयोग का वरदान है, और ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो आकर्षित होते हैं, जैसे इसमें चैतन्यता का लगती है उनको, जिसको इससे आकर्षण है उसका पुरुषार्थ अपने आप तीव्र हो जाएगा। भारत वाले पूछते हैं ये ब्रह्मा में क्यों आया, मनोहर दादी कहती थी क्या तुम में आएगा क्या, ऐसे सत्यता की शक्ति से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, ऐसे बोलते जाओ, ऐसे ऐसे सत्य स्वरूप बच्चों को, ऐसे रहनदिल बच्चों को, ऐसे नम्रता धारण करने वाले बच्चों को, ऐसे सत्य नई दुनिया लाने वाले बच्चों को, ऐसे होमवर्क करने वाले बच्चों को, अच्छा ऐसे अपने अनुभव से दूसरों को बाप के समीप लाने वाले बच्चों को, ऐसे बीज के ऊपर फोकस करने वाले बच्चे को, बीज को शक्तिशाली वाले बनाने बच्चों को, ऐसे गोल्डन बनने वाले, गोल्डन जुबली में गोल्ड बनने वाले बच्चों को, ऐसे पहले से बैलेंस रखने वाले बच्चे को, याद प्यार में कहा सत्यता और नवीनता का बैलेंस रखने वाले बच्चों को, ऐसे चात्रक बच्चों को, ऐसे ऐसे नवीन भाषण करने वाले बच्चों को, नवीनता लाने वाले बच्चों को, वर्कशॉप करने वाले बच्चों को, ऐसे स्लोगन पर समझाने वाले बच्चों को, ऐसे नए टॉपिक्स पर बोलने वाले बच्चों को, ऐसे सेवा की धूम मचाने वाले बच्चों को, ऐसे दुख दर्द क्या हाँ, दर्द ना देकर तीर लगाने वाले बच्चों को, ऐसे सत्य ज्ञान सुनाने वाले बच्चों को, और बहुत सारा डैश 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 वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।